الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نساء میں آج ہم آیت نمبر 25 سے شروع کریں گے. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ. جو تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا، طول جو ہے وہ طاقت، استطاعت، مقدرت کو کہتے ہیں. یہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے، مالی بھی ہو سکتی ہے. یہاں یہ مال کے اعتبار سے زیر بحث ہے کہ جو آزاد مومنات سے شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، مقدرت نہیں رکھتے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ، تو تم غلام عورتوں سے شادی کر لو جو فتحیات میں سے تمہارے پاس ہیں، لیکن وہ بھی مومنات ہوں. جو لوگ مقدرت نہیں رکھتے، اتنا پیسہ نہیں رکھتے کہ آزاد عورت کے اخراجات اور حق مہر وغیرہ ادا کر سکیں، ان کو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ غلام عورت سے شادی کر لیں، کیونکہ اس کا حق مہر بھی کم ہوگا اور اس کے عام اخراجات بھی کم ہوں گے. یہ پرانے زمانے میں جب غلامی ابھی موجود تھی، اس زمانے میں غریب مومنین کے لیے ایک مسئلے کا حل پیش کیا گیا ہے. آگے چل کر پورا قانون جب ہوگا تو اس پر مزید تبصرہ کریں گے. فی الحال دو باتیں ہیں یہاں پر جو نوٹ کرنے کی ہیں عربی زبان کے اعتبار سے قرآن کے اندر سے. مما مالکت ایمانکم، یہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے قبضے میں ہو، قبضے والی، ٹھیک ہے جی. تو جو بھی آپ کے قبضے میں ہے، پیسہ ہو سکتا ہے، جائیداد ہو سکتی ہے، زمین ہو سکتی ہے، تو جتنی بھی قبضے میں آپ کے چیزیں ہوں گی وہ ساری کی سارے اس میں آ جائیں گی. اور انسان بھی پرانے زمانے میں ملکیت میں آتے تھے. فتحیاتکم کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے سے غلام چلی آ رہی ہیں. ان دونوں باتوں کو سمجھنا ضروری ہے قرآن مجید میں. قرآن مجید نے عام طور سے لونڈیوں کے لیے یا غلام عورتوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ اما کا لفظ تھا. اما یعنی غلام عورت. ہمارے ہاں بعض لوگ امت اللہ نام بھی رکھتے ہیں بچیوں کا، اللہ کی غلام، اللہ کی بندی. تو اما جو ہے وہ غلام عورت کے لیے بولا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ چھوڑ دیا. مرد کے لیے عبد بولا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چھوڑ دیا. فتح اور فتات کے لفظ استعمال کرنے شروع کیے. اب یہ قرآن مجید نے جب استعمال کیا تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو ما ملکت ایمانکم کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا تو ساتھ فتحیات کا لفظ بولا، تاکہ دونوں میں فرق ہو جائے. ایک وہ ہیں جو ابھی قبضے میں آئی ہیں، وہ فتحیات نہیں بنیں گی. جو پہلے سے غلام چلی آ رہی ہیں وہ بھی قبضے میں ہوتی ہیں، اور وہ بھی قبضے میں آتی ہیں جو جنگ میں قیدی بن جاتی ہیں. تو جو جنگ میں قیدی بنے گی وہ صرف ما ملکت ایمانکم، وہ فتحیات نہیں ہوئی، وہ لونڈیاں نہیں بنی ہیں. جو پہلے سے غلام عورتیں چلی آ رہی ہیں وہ الگ خواتین ہوں گی. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو جنگی قیدی ہیں وہ نہیں پیش نظر ہیں، جو پہلے سے غلام ہیں اور تمہارے قبضے میں ہیں تم ان سے شادی کر سکتے ہو. تو یہ فرق پڑے گا من فتحیاتکم کے الفاظ بولنے سے، ورنہ اتنا بات کافی تھی فمن ما ملکت، ٹھیک ہے. تو فمن ما ملکت ایمانکم من فتحیاتکم المومنات کا مطلب ہو گیا جو پہلے سے غلام چلی آ رہی عورتیں ہیں اور مومن ہیں، ان کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو اگر آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی مقدرت تمہارے اندر نہیں ہے. واضح ہے نا جی. تو یہ جو چیز ہے یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شادی کے قانون میں یہ معاملہ کر. اب اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ عورتوں کو، جو غلام عورتیں چلی آ رہی تھیں، ان کا اللہ تعالیٰ معیار سماج میں بلند کر رہے ہیں کہ یہ شادی کے لائق خواتین ہیں، صرف غلام بنا کے رکھنے کے لائق نہیں ہیں. یہ اس کے اندر فائدہ ہوا ہے کہ غلام عورتوں کا ایک سٹیٹس ذرا بلند کیا گیا ہے. اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ تعلیمات جو ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں قرآن مجید میں، یا پرانے انبیاء دیتے رہے ہوں گے، یا ہم بھی جب کوئی قانون بناتے ہیں تو اس میں سماجی جو پہلو ہوتے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں. تو قرآن مجید نے غلامی کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار کیا और उसमें ये उसी तदरीज में से एक स्टेज है कि जिसमें औरतों के साथ शादी करने का कह दिया गया है। पहले उसको एक समझिए कि गुलामों को आज़ाद करना नेकी करार दिया ताकि पता चले कि गुलाम बनाना गुनाह की बात है, ठीक है, ये एहसास दिलाया गया। फिर उनको नाम तब्दील कर दिए गए, उनको अमत और अब्दुल्ला नहीं कहा, अब्द नहीं कहा गया बल्कि फतह और फतेयात के लफ्ज़ बोले गए। उसके बाद फिर अब निकाह का, उनको पीछे हम सूरह अल-बकरा में पढ़ चुके हैं कि गुलाम औरतों को भी अल्लाह ने निकाह के दायरे में रख दिया, यहाँ पर भी ऐसे ही कर दिया। तो ये एक तदरीज से आहिस्ता आहिस्ता गोया गुलामों का मकाम जो है वो बुलंद किया गया। फिर गुलामी बंद कर दी गई, वो बदर से पहले ही वाक़ हो चुका था। और फिर जो गुलाम, ये वाले गुलाम थे फतह और फतेयात, इनके लिए आज़ादी का कानून भी दे दिया गया कि किस तरह से गुलामी में से निकल सकते हैं। तो ये कुरान का असलूब उसने इख्तियार किया है। तो अब यहाँ पर ये कहा गया कि जो मर्द आज़ाद औरतों के अखराजात नहीं उठा सकते, उनके साथ शादी करने की मकसद नहीं रखते, तो वो गुलाम औरतों के साथ शादी कर सकते हैं जो मोमिन गुलाम औरतें हैं। वल्लाहु आलम बे ईमानेकुम। अब ये दो जुमले जो हैं ये बीच में तफसील करने के लिए कि मैं ये हुक्म क्यों दे रहा हूँ। वल्लाहु आलम बे ईमानेकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमानों को जानते हैं, बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम एक दूसरे से हो। ये दोनों बातें अरबों का या सहाबा कह लीजिए, सहाबा के दिल में ग़ुलामों की कदर पैदा करने के लिए है। यानी हमें किसी मर्द आज़ाद आदमी के लिए किसी ग़ुलाम औरत को बहसियत बीवी कबूल करना अरबों के लिए नामुमकिनात में से था। बहसियत बीवी कबूल करना, तो उसमें पहली चीज़ ये बोल दी कि मोमिनात हैं, तो ईमान से तो उनका मकाम बुलंद हुआ है ना। तो फरमाया कि मैं तुम्हारे ईमानों से वाकिफ हूँ, तो हो सकता है कि तुम कमज़ोर ईमान में हो और एक ग़ुलाम औरत ईमान में ज़्यादा ताकतवर हो। तो इसलिए ईमान की बुनियाद पर उनका जो मकाम बुलंद हुआ है वो काफिर नहीं है, वो काबिल नफ़रत नहीं है, तो तुम उनसे शादी कर सकते हो, मैं तुम्हारे ईमान से वाकिफ हूँ। दूसरा फरमाया बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम एक दूसरे से हो, यानी ग़ुलाम तुम में से है, तुम ग़ुलामों में से हो। ये जुमला बोलते हैं अरब जब बराबरी का मफहूम अदा करना होता है, बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम एक दूसरे से हो, तुम एक दूसरे के बराबर हो। ये इसमें ये मतलब नहीं होता कि तुम उधर से पैदा हुए और वो तुमसे पैदा हुए हैं, नहीं, तुम बराबर हो, बाज़ुकुम मिन बाज़। तो इसमें और मकाम बुलंद कर दिया ग़ुलाम ख़वातीन का कि वो तुम्हारी तरह की हैं, जैसे तुम इंसान हो वैसे वो इंसान है, जैसे तुम्हारे अंदर इंसानी खूबियाँ हैं वैसे उनके अंदर हैं, जैसे तुम्हारे अंदर इंसानी कमज़ोरियाँ हैं वैसे उनके अंदर हैं, जैसे वो नहा धो के ईमान ला के पाक साफ हो सकते हैं वैसे तुम हो जाते हो। तो कोई इसमें कराहत करने की, नफ़रत करने की, या ये ख्याल करने की कि वो छोटा स्टेटस है उनका, नहीं। दो चीज़ें सामने रख दी कि ग़ुलाम औरतों को अपनी ही तरह समझो क्योंकि वो तुम्हारी ही की तरह इंसान है और वो साहिब ईमान है, तो उनका ईमान भी काबिल कदर चीज़ है। तो ये कुरान का ख़ास तरीका है कि वो बात इस तरह से करता है कि हुक्म बयान करते करते बीच में वो चीज़ें भी, जहन साजी वाली जो चीज़ें होती हैं, ब्रेन वॉशिंग वाली जो चीज़ें होती हैं कि ग़ुलामों के बारे में दिमाग तब्दील हों, वो इंसानों की तरह उनको ट्रीट किया जाए। तो वल्लाहु आलम बे ईमानेकुम, अल्लाह तुम्हारे ईमानों से भी वाकिफ़ है, और दूसरी बात ये कि बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम बिल्कुल बराबर हो, एक जैसे हो, कोई फ़र्क नहीं है तुम्हारे अंदर, वो भी इंसान तुम भी इंसान, वो भी बाबा आदम की औलाद तुम भी बाबा आदम की औलाद, वो भी अम्मा हुबा की औलाद तुम भी अम्मा हुबा की औलाद। तो इससे समाजी मसला है कि वो बेचारे ग़ुलाम बनकर तुम्हारे हाथों में आ गए हैं, तो इसकी वजह से ये नफ़रत नहीं होनी चाहिए कि तुम उनसे शादी ना करो, नहीं, उनका ईमान का भी एतबार करो और उनके इंसान होने का भी एतबार करो। चुनाचे हुक्म आगे बढ़ता है, अल्लाह ताला के फन के हु हुन्ना बे इज़्ने अहले हिन्ना, इनके साथ शादी करो उनके अहल के, उनके मालिकों की इजाज़त से। यहाँ एक एक लफ्ज़ नगीना है, बहुत खूबसूरती से अल्लाह ताला ने लफ्ज़ों को चुना है। तो पीछे जो बात चली आ रही थी वो भी, फतेयात का जो लफ्ज़ चुना वो भी, उसके साथ मोमिनात का इजाफा किया वो भी, वल्लाहु आलम बे ईमानेकुम ये इजाफा भी, बाज़ुकुम मिन बाज़, अब कहा कि उनके अहल के इज़न से उनसे निकाह कर लो। अब ज़ाहिर है कि गरीब साहबा जो हैं, अगर उनके पास ग़ुलाम औरत होगी, लौंडी घर में होगी, ग़ुलाम होगा, तो वो तो साहिब दौलत आदमी हैं, तो इन इसका मतलब है कि इनकी अपनी गुलाम औरतें नहीं हैं, इनके अपने घर में नहीं हैं, तो किसी की गुलाम औरत से शादी करनी है, उनके अहल की इजाज़त से शादी कर लो। अब जो अहल है, होना ये चाहिए था या मालिक का लफ्ज़ बोला जाता कि उनके मालिकों की इजाज़त से शादी कर लो, लेकिन अहल बोला गया। ये इसमें उनके लिए हमदर्दी, उनको घर वाले का तसव्वुर देना कि वो अहले उनके अहल हैं, उनके घर वाले हैं, तो ये भी अपनाइत का यानी घर में होने का मफहूम पैदा कर दिया अल्लाह ताला ने। तो इसमें बड़ी लताफत है, उनकी तरफ इल्तफात है, गुलामों की तरफ उनके लिए मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात हैं, और अहल का लफ्ज़ बोलकर इनको जो मालिक हैं उनको ये एहसास दिलाया गया है कि तुम लोग उनके साथ घर वालों जैसा सलूक किया करो। तो बड़ी खूबियाँ हैं ऐसा अल्फाज का चुनाव कि लगता ही नहीं है कि गुलामों के बारे में बात हो रही है। फ़न के हो हन्ना बेजने अहले हन्ना, तो तुम इनके साथ शादी करोगे इनके मालिकों की इजाज़त से। अब हमारे मफहूम अदा करने के लिए मालिक कह रहा हूँ, मतलब उनके मालिकों से या उनके घर वालों की इजाज़त से उनके साथ शादी कर लोगे। तो ये अब कानून ये बना कि अगर कोई आदमी मकदरत नहीं रखता आज़ाद औरत के अखराजात उठाने के, तो वो ग़ुलाम औरत से शादी कर सकता है, उसके ईमान की ईमान ने जो उनका मकाम बुलंद किया है, और जो इंसान होने की वजह से उनका मकाम तुम्हारे बराबर है, इस वजह से तुम उनसे शादी करो, और ये नफ़रत और हकारत जो ग़ुलामी की वजह से उनके साथ तुम कर रहे हो इसको छोड़ दो। वआतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिलमारूफ, और उनका हक महर भी अदा करोगे सही तरीके पर, दस्तूर के मुताबिक। अब ग़ुलाम औरत का तो कोई चीज़ मलकियत होती नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उनको अपने हक महर का मालिक बना दिया। बदकिस्मती यह है कि हमारी फिका में कुछ फुकहा ने कहा कि नहीं, ये हक महर उसके मालिक को दिया जाएगा, और कुछ ने कहा कि दिया मालिक को जाएगा, लेकिन मालिक इस शादी में जो तैयारी करनी है, उसका जहेज बनाना है, कोई कपड़े वपड़े बनाने हैं, तो वो इसी खर्चे से बनाएगा। ठीक, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, इन्हीं को देना है। वह आतूहुन्ना, इनको दोगे अजूरा उनका, इनका हक महर इन्हीं को, आतूहुन्ना इनको दोगे, तो आका को या अहल को नहीं कहा गया। तो अहल का लफ्ज़ भी इसलिए बोला गया कि वो घर का माहौल बने, और घर के माहौल में जैसे खैर हमारे मुल्कों में भी हक महर शायद ससुराल को ही जाता होगा, यानी लड़की के घर वालों को, लेकिन असल में वो खातून का हक होता है। वह तो हुन्ना अजूरा हुन्ना, तो उनका हक महर उन्हीं को दो बिलमारूफ भले तरीके। इसमें दो भले, बिलमारूफ का मतलब दो पहलुओं से यहाँ मुराद है। ये को देने का अंदाज़ इज्जत वाला, एहतराम वाला, खूबी वाला होना चाहिए, और दूसरा ये कि उसकी जो अमाउंट मुकर्रर करो तुम देने वक्त, वो भी अच्छे दस्तूर के मुताबिक हो। ये ना हो कि बिल्कुल हकारत से कोई 10 रुपये हक महर दे दिया, नहीं, वो भी एक इंसान की कीमत को सामने रखो कि वो कितना वैल्यूएबल चीज़ है, तो उसकी हकारत के साथ उसका हक महर ना रखो। हमारे यहाँ भी ये नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेकर 32 रुपये का हक महर तय किया जाता है, वो मारूफ के ख़िलाफ़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हक महर कायम किया था तो उस वक्त 32 रुपये की बड़ी कीमत थी, वैल्यू थी, तो उस 32 रुपये को आज अगर तब्दील करें तो बात कहाँ पहुँचेगी। तो इसलिए ये जो चीज़, और फिर वो शादी भी इस तरह के हालात में हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दिया था, वो हक महर से ज़्यादा जहेज़ की बात थी। बहरहाल, तो वआतूहुन्ना अजूरहुन्ना बिलमारूफ, तो जो सोसाइटी का चलन है, जो सोसाइटी का मारूफ है, उसके लिहाज से उनका हक महर तय होना चाहिए। यानी ये डिसाइड होना चाहिए कि हम एक खातून जो इंसान है, आदम अलैहिस्सलाम और नूह और हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हुवा की औलाद है, तो उसका क्या हक महर होना चाहिए। तो दो पहलुओं से मारूफ, एक ये कि देते हुए इज़्ज़त एहतराम के साथ, या नहीं कि मुंह पे मार दिया, या इस तरीके से दिया कि तरसा तरसा के आज 10 रुपये दे दिए, कल 20 रुपये दे दिए, ये भी नहीं। तो देना है तो अच्छे तरीके से देना है, और अमाउंट भी उसकी जो तय करनी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। मोसनातिन गैरा मुसाफिहातिन, तो इस हालत में कि ये जो ग़ुलाम औरतें हैं ये मोसनात हों। मोसनात का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं मोसना के, एक पाक दामन, ठीक है, और दूसरा मतलब होता है शादीशुदा, और तीसरा मतलब होता है आज़ाद। ठीक है, तो स्याको सबाक की रोशनी में हम इसके कोई भी मानी ले लेते हैं जो स्याको सबाक का। अब चूँकि ग़ुलाम औरतें हैं, आज़ाद तो है नहीं, तो इसलिए आज़ाद वाले मानी ख़त्म हो गए, और शादी तो इनकी हो रही है तो शादीशुदा होने के मानी भी ख़त्म हो रहे, तो पाक दामन मतलब रह जाएगा। तो इनको, इनके साथ शादी करोगे इस हाल में कि वो पाक दामन हों। इसके भी दो पहलू हैं, जिस तरह मारूफ के दो पहलू थे कि अमाउंट मुकर्रर करनी है तो वो मारूफ के मुताबिक, देने का तरीका, अदा करने का तरीका वो भी मारूफ के मुताबिक होना चाहिए। तो मोहसनात के दो पहलू हैं, एक ये कि वो शादी करने से पहले पाक दामन हो, दूसरा ये कि शादी इस नीयत से कर रहे हैं कि पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारनी है, यारी आशनाई वाली शादी नहीं करनी है। ये दोनों यानी निकाह हकीकी सच्चा जायज़ होना चाहिए, ये नहीं कि बस कर लेते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि निकाह पढ़ रहे हैं लेकिन हकीकत में कुछ गड़बड़ करने का प्रोग्राम है। ठीक है, तो मोहसनात का मतलब यह है कि वो शादी करने के इरादे से शादी कर रही हैं और पाक दामनी का फैसला करें। गुलाम औरतों को मौसम का एक पहलू और भी समझ लीजिए जो आगे भी कई जगहों पे काम समझ में मदद देगा। एहसान का असल मतलब होता है, आप लोगों ने इब्ने कय्यम की किताब पढ़ी होगी हिस्ने हसीन, ये उसी मौसम लफ्ज़ से निकला हुआ है। महफूज किला, यानी दुआओं की किताब का नाम उन्होंने रखा हिस्ने हसीन, कि ये वो दुआएं हैं जो आपके ईमान की हिफाजत करेंगी। या ठीक है, तो एहसान का मतलब होता है हिफाजत में होना, हिफाजत में होना, प्रोटेक्शन में होना। आज़ाद औरत को अरब मुआशरे में, शायद हर जगह ही, भाई बहन की, वालदैन की, शोहर की हिफाजत हासिल होती थी, कोई उसकी तरफ बुरी निगाह से नहीं देख पाता था या उसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो ये असल में मानी ये है एहसान के, कि जिसको हिफाजत हासिल है सोसाइटी में, जिसको एक तहफ़ हासिल है बहन भाइयों की तरफ से, वालदैन की तरफ से, शोहर की तरफ से। ग़ुलाम औरतों को ये तहफ़ हासिल नहीं होता था, क्योंकि ना उनका भाई मुआशरे में मौजूद है, ना वालदैन मौजूद हैं, वो तो किसी इलाके से उठा कर आकर बेच दी गई। तो अब इनको हिफाजत हासिल नहीं होती थी, तो जो चाहता था उनके साथ बुरा सलूक कर लेता था, जिनसी सलूक भी और दूसरे सलूक भी, काम पर लगाया हुआ है, बहुत ही मुश्किल किस्म के काम पे लगा दिया है, या जिनसी हवस का निशाना बना लिया है, तो वो बेचारियों के लिए हिफाजत की कोई जगह नहीं होती थी। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने शादी करनी है तो इनको मोहसनात बना कर शादी करनी है, तुम इनको हिफाजत फराहम करोगे। यानी पहला मैंने पहलू मान एक वादे कर दिया कि वो खुद पाक दामनी के लिए शादी करना चाह रही हैं, पाक दामन रहना चाहती हैं। दूसरा ये कि इनको एहसान फराहम किया जाएगा, हिफाजत फराहम की जाएगी। अब जिस मालिक की वो ग़ुलाम है वो इसके साथ ताल्लुक़ कायम नहीं करेगा। मैं पिछली नशिस्त में बता चुका हूँ कि ख़रीद लेना निकाह के कायम मकाम था, किसी को ख़रीद लेना निकाह के कायम मकाम था, इसको इल्लीगल नहीं समझा जाता था, निकाह ही की तरह का एक अमल था ये भी। तो निकाह करके जो चीज़ जायज़ होती है वो ख़रीदने से भी जायज़ हो जाती थी, पुराना कानून ये चल रहा था। तब अल्लाह ताला ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ आए थे, ये कहना चाह रहे हैं कि इनके अहल से इजाज़त लेकर शादी करोगे ताकि वो उनको मलकियत में तो रखें लेकिन जौजियत में ना रखें। ठीक है ना, अगर कोई मालिक अपनी मालिक होने के अतबार से भी जिनसी ताल्लुक रख रहा है और इसका निकाह भी हो गया तो ये तो काम ख़राब है, उसको अल्लाह ताला रोक रहे हैं कि ये मोहसनात होंगी, यानी इनको अब तहफ़ हासिल होगा। मालिक भी तहफ़ देगा कि अपने दोस्तों के हथे नहीं चढ़ने देगा, खुद अपने आप को कंट्रोल करके रखेगा उसके बारे में, और इसका शोहर भी इसको मोहसना बना के रखना चाहेगा। गैरा मुसाफिहात, इनको बदकारी के लिए, ये बदकार नहीं होंगी, इनको बदकारी का पेशा नहीं कराया जाएगा। गैरा मुसाफिहात का मतलब ये, अब इसके भी दोनों पहलू हैं कि शौहर इस औरत को इस मकसद के लिए नहीं ला रहा, और जो बीवी है, जो ग़ुलाम औरत है, वो इस मकसद के लिए शादी नहीं कर रही है बल्कि पाक दामनी के लिए, और इस तरह के ताल्लुक जो मोहसना वाला ताल्लुक है वो कायम करने जा रही है। यानी इलीगल ताल्लुक कहीं कायम नहीं करेगी, ना शौहर उसको मजबूर करेगा। ठीक है, दोनों इसके अंदर पहलू हैं, एक शौहर की तरफ से, एक खातून की तरफ से। तो फरमाया कि वातुहुन्ना अजूराहुन्ना, इनको पूरा हक मेहर दोगे मारूफ तरीके के साथ, इस तरह से कि वो पाक दामनी वाली जिंदगी गुजारने को तैयार हों, और शौहर भी उनको तहफ़ फराम करेगा और उसके अहल भी उसको ये तहफ़ फराम करेंगे। गैरा मुसाफिहातिन, और वो बदकारी करने की नीयत से ना शोहर लेके आ रहा है कि निकाह कर लेते हैं बाद में पैसा कमाएंगे, ना वो इस मकसद के लिए शादी करें। वला मुत्तखिज़ात अख्तान, ना वो चोरी छुपे दोस्ती करने वालियाँ हों। अब ये एक यानी इस शोहर के साथ भी ताल्लुक चोरी छुपे वाला तो नहीं है, बस रंगरलियाँ मनाने के लिए ज़ाहरी तौर पर निकाह कर लिया गया है, ऐसा तो नहीं है। और दूसरा ये कि वो शौहर के साथ शादी करने के बाद अपने मालिक से, मालिक के बच्चों से, मालिक के दोस्तों के साथ चोरी छुपे कोई ताल्लुक दोस्ती का कायम ना रखे। गैर मुसाफिहातिन में बदकारी का पहलू नुमाया है, और मुत्तखिज़ात अख़दान में ज़िना से नीचे वाले जो नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं वो भी पेश नज़र हैं। यानी मुसाफिहातिन में ज़िना का पहलू गालिब है, खुली बदकारी वाला, और मुत्तखिज़ात अख़दान में और जो ताल्लुकात होते हैं ज़िना से पहले पहले वो पेश नज़र भी हैं इसके अंदर। तो ये पूरा एक यही चीज़ें सारी की सारी पाकदामन औरतों के लिए भी बोली गई हैं, पाकदामन मर्दों के लिए यानी आज़ाद औरतों और आज़ाद मर्दों के लिए भी। तो इसी शादी का जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है वो इन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है कि मोहसिन बनने के लिए शादी हो रही है, गैर मुसाफिहात वाली शादी हो रही है, और मुत्तखिज़ात अख़दान के बग़ैर शादी हो रही है। तो हमारी शादी एक पाकीज़ा नहायत पाक दामनी की तरफ जाने वाला और एक दूसरे मियाँ बीवी को हिफाजत फराहम करने वाला ताल्लुक है, ना कि ये नाजायज़ किस्म के ताल्लुकात बनाने के लिए एक रास्ता। ठीक है जी, अब ये अब आप पूरी बात को समझिए कि जो निकाह की आज़ाद औरतों के साथ निकाह की मकदरत नहीं रखते, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि उनका हक मेहर दे सकें या उनके अखराजात उठा सकें, तो वो ग़ुलाम औरतों से शादी कर लें जो मोमिनात हैं। उनके ईमान की कदर करो और उनके इंसान होने की कदर करो, और ये नफ़रत छोड़ दो, इनके साथ शादी कर लिया करो। अलबत्ता इनके साथ शादी करोगे तो उनके मालिकों की इजाज़त से करोगे और हक महर भी इनको पूरा दोगे मारूफ तरीके के मुताबिक, लेकिन ये शादी यारी आशनाई बदकारी के लिए नहीं, पाक दामनी के लिए की जाएगी। मैंने तफसील कर दी है खुलासतन। फ़ाइज़ा ओ हुसिन्ना, तो जब उनकी हिफाजत फराहम कर दी जाए, अब आप मोहसनात को समझ सकते हैं, ये वही लफ्ज़ है कि जब उनको ये हिफाजत फराहम हो गई, उनको पाक दामन रखने का पूरा इंतज़ाम हो गया, मालिकों ने तहफ़ फराहम कर दिया, इस शौहर को इजाज़त दे दी शादी करने की, इस शौहर की हिफाजत में वो आ गई, तो जब ऐसा हो जाए फ़ाइन आतैना बिफाहिशतिन, अब अगर वो ज़िना करें, फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मोहसनात मिनल अज़ाब, तो इनको आज़ाद औरतों के मुकाबले में जो उनको सजा दी गई है इनको उसकी आधी दी जाएगी। ठीक है, वो सज़ा क्या है उन औरतों की? 100 कोड़े, आज़ाद औरतों की, आज़ाद मर्दों की भी। अब इनको 50 कोड़े लगाए जाएंगे अगर ये तहफ़ फ़राहम करने के बावजूद, शोहर की हिफाजत में आने के बावजूद, उसके अहल की तरफ से उसको पाक दामन रखने के अहद के साथ शादी जब हो गई है और अब वो खुद अपनी मर्जी से जना करने चली गई है, तो फिर उसको आधी सजा दी जाएगी। इससे एक और मसला आपके सामने वाजी हो जाएगा कि शादीशुदा गुलाम औरत को भी 50 कोड़े लगाने का कहा गया है, रजम नहीं कहा गया। तो रजम की सजा का ताल्लुक शादी से हरगिज नहीं है। ठीक है, हम जब सूरह मायदा आएगी तो हम वाजे कर दूंगा मैं कि मौलाना फराही की राय बहुत साहिब है, दुरुस्त है, कि असल में वो रेप की सजा दी गई है, रजम की सजा जिनको दी गई है। तो फरमाया कि अगर ये गुलाम औरतों को इतनी हिफाजत फराहम कर दी गई हो और फिर वो जना करें, तो फिर उनको आधी सजा देनी है गुलाम औरतों को, آزاد عورتوں کی سزا میں سے. ذالک لمن خشی الانت منکم. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جو تمہیں یہ شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہوں تو اس لیے دے رہا ہوں, ان لوگوں کو دے رہا ہوں جو گناہ میں پڑ جانے کا ڈر رکھتے ہوں. ٹھیک ہے, تو اصل میں مشکل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کی وہ غلام ہے, ملکیت اس کی ہے, شادی اس کے ساتھ ہو گئی, اس میں جھگڑے پیدا ہو نہیں ہونے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں گناہوں سے بچنے کے لیے تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم کسی کی غلام عورت سے شادی کر لو. اصل میں تو جو جس کی وہ غلام ہے اسی کو شادی کرنی چاہیے اس کے ساتھ, لیکن میں اس لیے کہ تم گناہ میرا پڑ جاؤ اس لیے تمہیں اس کی اجازت دے رہا ہوں. تو ہونا چاہیے کہ ملکیت اور زوجیت اکٹھی ہونی چاہیے. یہ درست بات نہیں ہے کہ, یعنی اچھی بات نہیں ہے کہ غلام کسی کی ہو بیوی کسی کی ہو. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ, تو اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے. تو اب یہ قانون کے اندر جو حکمت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ یہ اجازت کراس میرج جو ہو رہی ہے کہ غلام اس کی ہے بیوی اس کی ہے, اس کو اس لیے اجازت دی جا رہی ہے تاکہ وہ نوجوان جو شادی کی مقدرت نہیں رکھتے تو وہ گناہوں میں نہ پڑ جائے, ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے یہ شادی کا اجازت دی جا رہی ہے. بہتر یہی ہے کہ تم صبر کرو اور اس طرح کا جھگڑا پیدا نہ ہو جو ایک غلام کی جو دوسرے کی ملکیت میں ہو اس کے ساتھ شادی کرو. تو اب فرمایا کہ تمہارے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے, یعنی یہ شادی نہ کرو تو زیادہ اچھا ہے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے. مطلب یہ کہ جو شادیاں ہو جائیں اس میں جو جھگڑے پیدا ہوں گے اس کو اگر اچھے طریقے سے سلجھا لو گے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے. اور اس قانون کے اندر خدا کی شفقت پیش نظر ہے کہ وہ تمہیں ایک ایسی تنگی میں نہیں ڈالا. انت جو ہے اس کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ اصل میں مشقت ہے, اس کے معنی مشقت کے ہیں. تو مشقت جو ہے, جو آدمی شادی کی عمر کو پہنچ گیا ہے اس کے جذبات طاقتور ہیں لیکن اس کو شادی سے کرنے کا موقع نہیں ہے, تو ایک اس طرح کی یہ جو مشقت ہے اس کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے. اس مشقت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے اوپر نرمی کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب یہ آیت 25 میں شادی کا قانون غلام عورتوں کے ساتھ دیا گیا ہے. آگے فرمائے, یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بیان کر دیں تمہارے لیے, ٹھیک ہے, ویہدیکم, اور تمہیں رہنمائی کریں یا چلائیں تم میں ان لوگوں کے طریقوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں. ویتوب علیکم, اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے اوپر مہربانی فرمائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. جتنے پیچھے قانون بیان ہوئے ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر 26-25 نمبر آیت تک, وہ سارے کے سارے عربوں کے لیے ماننے مشکل تھے. سارے کے سارے یتیموں کے ساتھ جو اللہ نے حکم دیے, شادیوں کا جو حکم دیا, وراثت کا جو قانون دیا, یہ سارے کے سارے عربوں کے لیے اجنبی قوانین تھے. اور یقیناً بحثیں بھی پیدا ہو گئی ہوں گی کہ یہ کیا شریعت دے رہے ہیں جی, کیا کس طرح کے حکم دے رہے ہیں, غلام یتیموں کا اتنا حق ہے کہ سنبھالے ہم اور ان کا ایک روپیہ بھی نہیں کھا سکتے, یا ان کی بیوہ ماں سے شادی کر لیں گھر میں ایک اور مصیبت پال لیں, یا یہ جو ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غلاموں کے ساتھ شادی کر لیں, تو یہ ان کے لیے سارے قوانین اجنبی تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی طرف توجہ دلائی کہ میں جو تمہارے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے. پہلی بات یہ فرمائی کہ یرید اللہ لیبین لکم, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے قوانین تمہارے لیے بیان کر دیں, اپنے احکام تمہیں خود بول کر بتا دیں. لوگوں نے یہاں ترجمہ کیا ہوگا واضح کر دیں, ٹھیک ہے, یعنی واضح لفظوں میں بیان کر دیں, لیکن یہ وضاحت بمانہ ایکسپلینیشن نہیں آتا, یہ وضاحت بمانہ بیان کے آتا ہے. جیسے ہم کہیں کہ میں نے کھل کر بات کر دی ہے, پوری بات واضح کر دی ہے, ایک یہ واضح کرنے کا مطلب ہے, ایک واضح کا مطلب ہے کہ میں نے مشکل آیتیں ساری واضح کر دی ہیں. اس میں تشریح کے معنی ہے, ایکسپلینیشن کے معنی ہے, وہ مراد نہیں ہوتے تبیین کے. تو تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنے قوانین بیان کرنا چاہتا تھا، یعنی اپنے قوانین تمہیں دینا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ پوری شریعت میں ہمارے پاس جو ہیں وہ دو طرح کے صورت ہوتی ہے احکام کی، بلکہ تین طرح کی کرنے چاہیے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ نے لفظوں میں بیان کر دیا۔ پہلی صورت قانون کی ہوتی ہے کہ اللہ نے بیان کر دیا، مثلا اللہ نے کہا ہے کہ بھئی تم غلام عورت سے اس صورت میں شادی کر سکتے ہو اگر تمہیں گناہ کا ڈر ہے، مشقت تمہیں ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ تو یہ اللہ کے بیان کردہ قوانین ہے، اس کو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ پہلی جو قسم ہے قوانین کی کہ میں قانون دے رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی استنباطی بات نہیں ہے، یا تمہیں میں استنباط کی یہاں اجازت ہی نہیں دے رہا، خود بیان کر رہا ہوں، تو میرے اسٹیٹڈ قوانین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے قوانین تمہارے لیے اسٹیٹ کر دوں، بیان کر دوں، لفظوں میں کہہ دوں۔ پہلی اسٹیج، پہلے قوانین یہ۔ دوسرے قوانین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے بیان کردہ حکموں سے استنباط کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے قوانین وہ ہوتے ہیں ہماری شریعت کے اندر جو اللہ کے حکموں سے استنباط کیے جاتے ہیں۔ یہ جو احکام ہو، خواہ نظریات ہوں، وہ ہم استنباط کرتے ہیں۔ تو مثلا یہاں سے پچھلی جو آیت ہم نے پڑھی کہ غلام عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے، تو غلام عورتوں سے شادی کا مطلب ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ تمہیں مشقت میں یا انت سے بچانے کے لیے، تو ہم اس کی بنیاد پر کوئی قیاس کریں کہ اچھا غیر مسلم سے بھی مثلا شادی ہو سکتی ہے، تو یہ استنباط ہوگا۔ تو استنباط جو ہے وہ اصل قانون کی جگہ نہیں لے سکتا، وہ خدا کے بیان کردہ قانون نہیں ہے بلکہ ہمارا استنباطی قانون ہے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے، تیسری چیز ہوتی ہے کہ ان استنباطوں سے پھر ہم کچھ اور استنباط کرتے ہیں۔ یہ سب سے کمزور قانون ہوگا، اللہ کی بات سے استنباطی بات، ڈرائیو کیا ہوا قانون، اور پھر ڈرائیو سے ڈرائیو کیا ہوا قانون۔ تو یہ تین لیول کا قانون ہماری شریعت میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو اصل قانون پہلا ہے، اصل شریعت پہلی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ یہاں یہ جملہ بول کر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے اپنے قوانین سٹیٹ کرنا چاہتا ہوں، خود اپنے لفظوں میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے تفصیل سے بیان کر دیے۔ تو یہ بہت بڑی آیت ہے، اس کو ترجمہ خراب کر دیا لوگوں نے کہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لفظوں میں تمہیں قانون دینا چاہتا ہوں۔ پہلی حکمت ان قوانین کے دینے کی یہ ہے، کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے اللہ تعالیٰ نے زیر بحث لے آئے، یتیموں کا مال، شادی، نکاح، کیا وراثت، حصے بانٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیوں کہ وہ اپنے لفظوں میں قانون دینا چاہتے ہیں۔ دوسری جو وجہ بتائی ہے اس سارے قانون کے بعد، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دکھاؤں پہلے لوگوں کے جو طریقے تھے وہ تمہیں سکھاؤں، ان کی طرف رہنمائی کروں۔ یہ قوانین کیا تھے، کیا راستے تھے؟ تو چونکہ بحث یہ ہو رہی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئی نئی باتیں کر رہے ہیں، کس طرح کے قوانین دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، یہ تو میری پرانی شریعتوں میں یہی احکام چلے آ رہے ہیں۔ نوح نے بھی یہی حکم دیا، ابراہیم نے بھی یہی دیا، موسیٰ نے بھی یہی دیے حکم علیہم السلام، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دے رہے ہیں، تو کوئی نئے قوانین نہیں ہیں۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا کہ تمہارے پہلے صالحین کے قوانین، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس میں اشارہ کر دیا کہ میں نے جو غلطیاں بتائی ہیں تمہارے پہلے لوگوں کی، وہ بھی اس کے اندر ہے کہ باپ کی منکوہا کو وراثت میں تم نہیں لے سکتے ہو، تو وہ بھی سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جرم تھا جو کرتے رہے ہو تم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تو جو نیک راستے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ان قوانین کے اندر، جو ناجائز راستے سے وہ بھی بتا دیے، تو سب کی طرف رہنمائی کر دی۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، یہ بہت دل نواز جملہ ہے، لفظ جو چنے اللہ تعالیٰ نے وہ غیر عربوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے مسلیڈنگ ہو سکتے ہیں، لیکن جیسا پچھلی آیت میں ایک لفظ ایسا تھا کہ کیا محبت جھلک رہی تھی غلام عورتوں کے لیے، ایسے ہی یہاں یتوبہ علیکم میں ہم انسانوں کے لیے اللہ کی محبت جھلک رہی ہے۔ اب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، ہم تو یہی کہیں گے کہ تم عنایت کرے، مہربانی کرے، یا تمہاری توبہ قبول کرے، یہ ہم تجربے ہم کر دیں گے۔ मतलब यह है कि मैं तुम्हें जो कवानीन दे रहा हूँ तो तुम्हारी हमदर्दी में दे रहा हूँ, तुम्हारी खैरख्वाही में दे रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर मैं अपनी मोहब्बत का परतव करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर इनायत करना चाहता हूँ। कवानीन कैसे इनायत होते हैं, यह पूरे कानून की जो इस्लामी शरीयत है उसकी आपको हिकमत मालूम होगी कि अल्लाह ताला की जो कवानीन है वो हमारी खैरख्वाही में है, वो हमारे ऊपर खुदा की रहमत है, इसलिए पूरी हदायत को भी रहमत कहा गया। तो ये क्यों रहमत है, दुनिया में इसका कोई फायदा नजर आए या ना नजर आए, आखिरत में लाजमन निकलना है। हम इन कवानीन को अपनाकर कल जन्नत हासिल कर सकते हैं। एक तो रहमत का पहलू ये है, यतूबा अलैकुम का एक पहलू ये है, खुदा की मेहरबानी ये है कि वो हमें ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहता है कि कल क्यामत वाले दिन हम कामयाब हो जाएं। दूसरा इसमें अंदर शफकत और मेहरबानी का पहलू ये है कि अगर हम इस दुनिया में अपना लेते हैं तो जुल्म उद्वान खत्म हो जाता है, और जुल्म उद्वान का खात्मा ये बहुत बड़ी रहमत है। किसी मुल्क में, किसी इलाके में, किसी कौम में अगर जुल्म खत्म हो जाए तो इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। आगे फरमाया वल्लाहु अलीमुन हकीम, तो अल्लाह ताला ने ये जो कवानीन दिए हैं वो अपने इल्म की बुनियाद पर और अपने हिकमत की बुनियाद पर दिए हैं। पीछे जो सिफत गफुर रहीम थी इस पर मैं पहले बात कर चुका हूं कि जब दो इकट्ठी सिफात अल्लाह ताला लाते हैं तो एक पेयर बनता है, ये पेयर जो है ये अपने खास मानी अदा करता है। तो मसलन मगफरत के अंदर जो लफ्ज़ मगफरत है या गफूर का लफ्ज़ है, इसके अंदर अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ के अंदर की बात कर रहा हूँ, ना कि सिफत इलाही में। अरबी ज़ुबान के गफूर के लफ्ज़ के अंदर अदल का मफहूम नहीं होता, अदल का मफहूम नहीं होता, बस माफ़ कर दिए। हमारी उर्दू में माफ़ कर देंगे तो बस ठीक है, खा वो अदल के मुताबिक माफ़ किया है या अदल के मुताबिक किया है या बगैर, दोनों सूरतों में माफ़ करना बोला जाता है। लेकिन रहमत के अंदर अदल मौजूद होता है, ठीक है। तो गफूर रहीम का मतलब है कि खुदा की रहमत जिस माफ़ी को अदल के मुताबिक रहमत करार देगी उसी की मगफरत होगी, ठीक है। और ये जो दोनों सिफतों का इस तरह से मेल होता है, ये हमारी उर्दू में बहुत कम मिसालें हैं लेकिन कहीं कहीं हम करते हैं। जैसे हम कह दें लंबा तगड़ा, तो लंबा हमने बयान कर दिया और तगड़ा बयान कर दिया, तो इसमें दोनों मिलकर एक सिफत बन जाते हैं, इस तरह का यहाँ पर भी है। यहाँ अलीम व हकीम की बात की अल्लाह ताला ने, तो वैसे ही पेयर बनाया है जैसा गफूर रहीम का पेयर है। तो अलीम का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, और इसमें दवाम पाया जाता है कि शुरू से हमेशा से अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं। और हकीम का मतलब है कि अल्लाह ताला हिकमत वाले हैं। हिकमत का मतलब क्या है, दाना है अल्लाह ताला, अल्लाह ताला का हर काम दानाई वाला होता है, ठीक है। लेकिन दानाई वाले काम बुरे हो सकते हैं, तकलीफ दे हो सकते हैं, बज़ाहिर नुकसान दे हो सकते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अभी हमारे एक अजीज़ हैं जिनको उन्होंने पाँव काटना है, डॉक्टरों ने, तो वो पाँव काट रहे हैं, हिकमत का फैसला है, आज की साइंस का बेहतरीन फैसला होगा कि पाँव काटा जाए, वो काट रहे हैं। तो इल्म और हिकमत पूरा इस्तेमाल हो रहा है जो आज की मॉडर्न साइंस ने हमें दिया है, लेकिन जो अमल किया जा रहा है वो बड़ा तकलीफ दे। तो क्यों हिकमत वाला है, कि पाँव ज़ाया करके आदमी बचा लें, उसकी ज़िंदगी बचा लें। तो इस तरह से हिकमत वाले काम तकलीफ दे हो सकते हैं, नागवार हो सकते हैं, नापसंदीदा हो सकते हैं। तो पिछले जितने कवानीन हैं वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम्हें नागवार हो सकते हैं लेकिन हैं हिकमत वाले, उनको कबूल करो। गुलाम से शादी करनी पड़ जाए तो करो, वो इंसान भी है और ईमान वाला भी है, ईमान वाली भी है, ठीक है। तो अल्लाह अलीम हकीम, अब अलीम जो है वो इसलिए सिफत बोली गई कि अल्लाह ताला ने जज्बात में आकर ये कवानीन नहीं दिए हैं, बेख्याली में नहीं दे दिए हैं, पूरे इल्म की बुनियाद पर दिए हैं। तब जो पैर वाला कैफियत है वो समझिए, हिकमत अगर इल्म के बगैर हो, पूरी मालूमात ना हो, तो मसलन जो पाँव कटने की मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो कोई डॉक्टर आए बताओ, हो आजकल कौन पाँव काटता है, ये इलाज मौजूद है इस चीज़ का, अब इल्म की कमी से हिकमत पूरी इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन इल्म कम था तो पाँव काटने का फैसला हो गया, इल्म मुकम्मल हुआ तो पाँव नहीं काटने का फैसला तब्दील हो गया। तो इल्म और हिकमत जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो तभी बेहतरीन फैसला होता। तो ये दो पहलू के हिकमत इल्म के बेस पर कायम की गई है और इल्म हिकमत वाला है, बिल्कुल जाहिलाना इल्म नहीं है। तो ये दोनों सिफात मिलकर ऐसे फैसलों का सदूर है कि जो इल्म और हिकमत के ऊपर मबनी है। तो अब ये कानून के लिए जो पीछे दिए गए हैं उन कवानीन के लिए जहनों को आमादा करने के लिए अल्लाह ताला ने दो बातें कही हैं। एक पहली बात जो है वो तो कानून खुदा की शरीयत को बयान करने के लिए है कि मैंने अपने शरीयत अपने लफ्ज़ों में देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये कवानीन तुम्हें दिए हैं। और दूसरी बात ये कि ये कोई नई बातें नहीं हैं, पुराने अंबिया पुराने सालेहीन यही काम करते रहे हैं, और जो बुरे तरीके थे वो भी मैंने तुम्हें वाज़े कर दिए कि अपने आबाओ अजदाद के वो तरीके छोड़ दो जो गलत हैं। और फिर फरमाया कि मैं तुम्हारे ऊपर शफकत कर रहा हूँ, मेहरबानी कर रहा हूँ, इन कवानीन को अपनाओ। और ये फिर फरमाया कि अल्लाह ताला अलीम हकीम है, तो ये सारे कवानीन इल्म पूरे इल्म पर मबनी है और पूरी हिकमत पर मबनी है। इसको ऐसे ही ना समझो कि कोई अटकेलियों वाली बात है या दिल लगी वाली बात है। आगे मजीद फरमाया वल्लाहु यरीदु अन यतूबा अलैकुम, दोबारा दोहराया क्योंकि ये जो बात है यतूबु अलैकुम, ये यहाँ का यानी इन इस आयत का 26 और 27 नंबर आयत का ये की कंसेप्ट है कि शरीयत दरअसल खुदा की मेहरबानी का इजहार है बंदों के साथ। व यरीदुल्लज़ीना यत्तबिउन अश्शहवात, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर मेहरबानी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो लोग जो शहवात के पीछे पड़ते हैं वो चाहते हैं अंतमीलू मैलन नजीमा कि तुम पूरी तरह हदायत से दूर चले जाओ। इसमें अब कौन लोग चाहते हैं मुफसरीन का इख्तलाफ है, कुछ लोगों ने यहूद मुराद लिए हैं, कुछ लोगों ने मुनाफिकीन मुराद लिए हैं, लेकिन सच्ची बात है कि हर जगह ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि जो हमें खुदा की शरीयत से बरगश्ता करके दूसरे रास्तों पर ले जाना चाहते हैं। तो वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर मेहरबानी करना चाहते हैं और गलत रास्ते से बचाना चाहते हैं, जबकि जो शहवात की पैरवी करने वाले हैं वो तुम्हें गलत रास्ते पर डालना चाहते हैं। अब शहवात की पैरवी करने वाले कौन हैं? कुरान ने एक सूरा नाजियात है गालबन, उसमें बताया कि मन खाफा मकाम रब्बे ही, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, व नहन नफ्सा अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशों से बचाया। तो ख्वाहिशात क्या हैं? अगर इनको छोड़ दिया जाए, इनकी पैरवी शुरू कर दी जाए तो ये कहीं रुकती नहीं है, फिर ये हर कानून को हर अखलाक को तोड़ने को तैयार हो जाती है। तो जो लोग अपनी शहवात के पीछे पड़ते हैं, शहवात तस्में लस्ट्स या आखिरी दर्जे की तमन्नाएं होती हैं, ये सादा तमन्ना के मानी में नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की जो जज्बात होते हैं उनके लिए शहवात का रस बोला जाता है। तो वो लोग जो अपनी शहवात की पैरवी करते हैं वो ये चाहते हैं कि तुम्हें इस रास्ते से हटा दें। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अल्लाह के दीन को वो अपने लिए रुकावट समझते हैं, उनको नज़र आ रहा है कि अल्लाह का ये कानून अगर दुनिया में चल गया तो हमारी बहुत सारी तमन्नाएं धरी की धरी रह जाएंगी, हम तो वो भी नहीं काम कर सकेंगे, वो भी नहीं कर सकेंगे, वो भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये जज्बात पैदा करें कि ये बड़ा नागवार सा कानून है, अजनबी सी बातें हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए नए कवानीन दे रहे हैं, इनके अंदर कोई हिकमत नहीं है, कोई दानाई नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्लाह समाज का भी पता नहीं है, सोसाइटी कैसे चलती है, लोगों के जज्बात क्या हैं, एहसासात क्या हैं, इतने सख्त कवानीन देते जा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नहीं, मैं नरमी कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे ऊपर मेहरबानी कर रहा हूँ। और ये जो लोग हैं जो अपनी शहवात के पीछे पड़े हैं वो चाहते हैं कि तुम पूरी तरह से गुमराही की तरफ माइल हो जाओ, अंतमीलू माइल हो जाओ, मैलन अजीमा पूरी तरह से बड़े तरीके से तुम उनकी तरफ चले जाओ। यहाँ वक्त हो गया है तो रोक लेते हैं, मैं सवालात के लिए हाज़िर हूँ। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।